उन्होंने गोरों का बेवकूफ बना दिया। क्या हुआ कि आबिदी ने कहा कि वी हैव हिट अ रोड ब्लॉक, हम आगे पैसा कहां से लाएं, हाउ आर वी गोइंग टू गेट द मनी दैट अब्दुल कादिर खान वॉन्ट्स टू कंप्लीट द बॉम्ब। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ड्रग बिजनेस में जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। कि वियतनाम वॉर का जो सारा किस्सा हुआ था उसमें अमेरिका की हार क्यों हुई, क्योंकि उनके जो जितने फौजी थे वो काफ़ी सारे एडिक्ट हो गए थे, हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे। तो फजल हक ने कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे 10 साल पहले वियतनाम में, तो व्हाट इज़ टू स्टॉप गेटिंग द सोवियत सोल्जर्स एडिक्टेड इन अफगानिस्तान। तो उसने कहा कि यार इस धंधे में चलते हैं। तो उसने आबिदी से बात की और आबिदी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। उन दोनों ने एक कहा कि हम ये पाकिस्तान जो सारा बॉम्ब बना रहा है ना, इसको वन वे और दी अदर इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने एक ये ऑपरेशन क्रिएट किया ब्रास टैक्स, और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ओवररन करने वाले थे। तो सुंदर जी ने दिखा दिया कैपेबिलिटी कि भाई हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। उस समय डॉक्टर राजा रमन्ना, जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये जो ए क्यू खान है ना, इज़ अ फ्रॉड, ही डजंट हैव अ बॉम्ब। उसने कहा व्हाट रमेश, आई हैव द बॉम्ब, आई हैव इट एंड आई विल शो यू। तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उसने पूरी अपनी पूरी पोल खोल दी अपने आप। दे हैव अ ड्रग कार्टेल टुडे दैट हैज न्यूक्लियर वेपन्स। सो व्हेन देयर इज अ ड्रग कार्टेल व्हिच इज न्यूक्लियर आर्म्ड, व्हिच हैज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम एंड देन हैज गॉट जिहादीज स्लीपर एजेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु कुड डेटोनेट अ डर्टी बॉम्ब एनीवेयर। CIA का एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव था कि सोवियत एम्पायर को कैसे ख़त्म किया जाए, और वो उस ऑब्जेक्टिव में जो पाकिस्तानी बॉम्ब बना रहे थे तो उन्हें बनने दो, जो ड्रग्स बनने उन्हें बनने दो, हम उसको बाद में देखेंगे। बिकॉज द पाकिस्तानीज फील दे आर सेकेंड टू नन, दे फील दे शुड बी गिवन अ सीट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर द क्लेवरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। पर तभी तो आपके साला IMF पे बेल आउट हो रहा है क्योंकि आप तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं सकते। ISI इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग कार्टेल। द चाइनीज एक्टिवली इनकरेज, मेरी किताब में आप पढ़ लीजिए, एक्टिवली इनकरेज द पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने उनको बहुत मदद की, और इन्होंने फिर उनको कहा कि अब आप नॉर्थ कोरिया को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो। तो ब्रिटिश और अमेरिकन टीम लिबिया गई, जब वो वहाँ गए, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी फट गई कि वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सॉरी लेबोरेटरी के अंदर में ये सारे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से मिले हैं आपको, जो कि यूरेनियम इनरिच कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो अब्दुल कादिर खान से लिए हैं। द अमेरिकन्स सेड दैट लुक वी हैव टू प्रॉप अप मुशर्रफ बिकॉज हमें इंतकाम लेना है, अभी तक किसी ने कॉन्टिनेंटल अमेरिका पे अटैक नहीं किया था, साला उसामा बिन लादेन वाज द ओनली पर्सन, इसको तो हमने ख़त्म करना ही करना है, और उसके लिए चाहे हमको डेविल के साथ में खाना भी खाना पड़े, इवन इफ यू हैव टू सप विद द डेविल वी विल डू इट। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 98 में, नहीं किया
बिल्कुल
था।
बिल्कुल
1990 इन चाइना। फेयर वेदर फ्रेंड्स,
नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
नमस्ते, बहुत बढ़िया, थैंक यू
सर। मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था, द बॉम्ब द बैंक द मुल्लाज एंड द पॉपीज। मैं दिखा देता हूँ सबको, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक मुझे लगी, जितनी भी आज तक पुस्तकें पढ़ी उनमें से सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से ये एक है। इस टॉपिक पे, इस इशू पे जो, और जिस तरीके से आपने हर करेक्टर को एक दूसरे से लिंक किया है अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का रिसर्च मतलब इंडिया में बहुत लोगों ने किया होगा।
थैंक यू,
सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। अब ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कैसे पाकिस्तान ने, बैंक, मुल्लास एंड पॉपीज, ये तीन एक्टर्स हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, एसोसिएटेड लोग हैं, गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेजिडेंट्स, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स, ये सब इंटरलिंक्ड है। तो मैं चाहूँगा कि बैंक से शुरू करते हैं, कि क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी इतनी बड़ी अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो। पहली जो मीटिंग है मुल्तान में, आप देखेंगे शायद जनवरी में हुई थी 1972, बांग्लादेश बनने के 2-3 महीने के बाद,
नहीं महीने भी नहीं, 3 हफ्ते,
3 हफ्ते के बाद। तो ये मुल्तान में मीटिंग होती है जहाँ पे सभी टॉप पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिस्ट्स और इन सबको बुलाया जाता है। तो ये यहाँ से शुरू करके बताइए, और फिर उसके बाद बैंक पे आते हैं हम। बैंक कैसे बना, कैसे जिहाद को फाइनेंस करने वाला बैंक पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को फाइनेंस करने वाला बैंक बन जाता है?
देखिए ऐसा है कि जब ये पाकिस्तान का सरेंडर हुआ था ढाका में, मेरा ख्याल 16 दिसंबर था 1971, उसके बाद में जब भुट्टो प्रेसिडेंट बन गया था, प्रेसिडेंट आई थिंक ही वाज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट सर्टेन, ही वाज स्वॉन इन, तो उसने एक गुलाम इशक खान नाम का आदमी था जो कि एक इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, मेरा ख्याल है 1940 काडर का था, 1940, और ही वॉज वेरी इंटीमेटली इन्वॉल्व विद द ब्रिटिश, और जो ब्रिटेन की न्यूक्लियर स्पाइंग चल रही थी फ्रॉम 1940 टू 1956 अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, उसमें उसका काफ़ी रोल था। And I think he was also involved with the finances of the Pakistan government, if I can remember. तो भुट्टो ने पहले तो उसको co-opt कर दिया अपनी टीम में, और उसने कहा कि भाई हमें तो एक एक existential issue है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, अब हम कैसे बनाएं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो गुलाम इशक खान ने कहा कि भाई एक बैंक बनवाओ और उस बैंक से इसको फंड करवाओ, और आपके इतने दोस्त हैं मिडल ईस्ट में तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उनको कोऑप करो इस प्रोग्राम में। तो पहले तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि सब साइंटिस्ट को बुलाइए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पूछिए कि हु हैज़ दी कैपेबिलिटी और आइडियाज़ टू बिल्ड द बॉम्ब एंड कैन इट बी बिल्ट। तो उसने वो मुल्तान में वो मीटिंग रखी एक शामियाना के नीचे, तो वो सारे बंदे वहाँ हाजिर हो गए और उन्होंने ये डिबेट किया कि ये बॉम्ब बने कैसे। एक यूरेनियम का रूट होता है, एक प्लूटोनियम का रूट होता है, तो वो सारे जो थे वो कन्वेंशनल रूट जो था प्लूटोनियम का, उसके वो सारे प्रोटैगनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्लूटोनियम का रूट है, ये है वो है। तो भुट्टो गॉट एन इम्प्रेशन दैट लुक मे बी समथिंग कैन बी डन, बट पहले तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। सो दैट सेम नाइट भुट्टो चला गया अपने वर्ल्डविंड टूर पे गुलाम इशक खान के साथ में ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड। तो उसको दो समर्थक मिले, एक कर्नल गद्दाफी लिबिया के, और एक जो नया नया बना था ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें जो आबू धाबी रियासत का वो शेख था। तो ही अग्रीड टू, दे अग्रीड टू सपोर्ट भुट्टो इन दिस एंडेवर। अब उसके बाद में बात आई कि उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन हमें अश्योर्ड रिटर्न चाहिए। सो जो प्रॉब्लम ये आई कि जो बैंक का कैपिटल है वो तो बहुत ही कम होगा, बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू ट्रस्ट भुट्टो एंड से कि ये हमारा इक्विटी है कि ये ले लीजिए $100 million इक्विटी है, तो $100 million की इक्विटी पे आप बैंक शुरू करिए। उन्होंने कहा हम आपको $5-6 लाख देंगे, बाकी हम आपको डिपॉजिट देंगे, और डिपॉजिट बिकॉज वी आर टेकिंग अ रिस्क गिविंग इट टू यू, यू विल हैव टू गिव अस ए प्रीमियम ऑन दी लंडन इंटरबैंक रेट, तो आप हमको वो अश्योर्ड रिटर्न दीजिए, डिपॉजिट ले लीजिए, और उसके बाद में हम ये नहीं बताएंगे कि ये डिपॉजिट है कि हमने इक्विटी डाली है, उसी डिपॉजिट को इक्विटी अज्यूम करके आप अपना ये गेम शुरू करिए। अब सवाल आया कि कौन आदमी इतना तिगड़मी है पाकिस्तान में जो कि ये पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल डीलिंग्स को कर सकता है। तो एक आदमी था आगा हसन आबिदी, जो कि एक मुहाजिर था जो इंडिया से वहाँ पे पाकिस्तान गया था 47 में, यूपी का था, और उसने वहाँ पे हबीब बैंक में काम किया था। उसके बाद में उसने अपना एक बैंक फ्लोट किया, वो सैगल फैमिली है पाकिस्तान की, उनसे पैसा लेके। और फिर क्या हुआ कि उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उसका बैंक था UBL, यूनियन
यूनाइटेड बैंक
लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान। तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कि उसने एक सैगल फैमिली को ही बड़े लोन्स दिए थे, उनके NPS बढ़ गए थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ बढ़ते हैं वैसे उस समय उनके यहाँ बढ़े हुए थे। तो उसको हाउस अरेस्ट में डाला गया था। लेकिन आबिदी में एक खासियत थी कि जब ये गुलाम इशक खान को याद था कि जब 1964-65 में ये वॉर के पहले 65 के वॉर के पहले उन्होंने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे और जिहादी नेटवर्क्स उस वक़्त से सेटअप हो गए थे, तो वो उन जिहादी नेटवर्क्स को पैसा पहुंचाना आबिदी का काम था। तो आबिदी ने वो बड़ी वफादारी से वो हवाले करवाए थे, जिसके फलस्वरूप वो जो जिहादी पाकिस्तान के और कश्मीर में गए थे उनको पैसा मिल रहा था। तो उस ऑपरेशन का एक ब्रेन चाइल्ड जो था वो एक आदमी था, उसका नाम था अयूब बख्श अवान, एबी अवान। वो 1935 बैच का इंडियन आईपीएस ऑफिसर था जो 47 में पाकिस्तान में रह गया था और वो फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बन गया। और उसने आबिदी को एम्प्लॉय किया था ये पैसा भिजवाने के लिए, और ग़ुलाम इशक खान जो वो कश्मीर सेल था उसका एक वो मेंबर था, तो उसको पता था कि आबिदी में ये काबिलियत है। लेकिन अवान ने उसको कहा कि भाई जो आप आबिदी को इंटरनेशनल स्टेज पे लॉन्च करोगे तो ही नीड्स अ प्रोफाइल, उसको एक एडिक्वेट प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे कि उसकी रिस्पेक्ट हो एंड पीपल कम टू हिम, बिकॉज हमने तो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेना है और क्वेश्चनेबल मीन से पैसा रेज करना है ताकि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाए। अच्छा, फिर वो हमें ये सारी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी स्मगल करनी है, उसके लिए हमें एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। तो एक गोकुल शिपिंग कंपनी थी, एक अब्बास गोकुल था वो, तो उन्होंने कहा गोकुल शिपिंग कंपनी को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। तो फिर उनको, बिकॉज बैंकिंग इन 1970s वाज स्टिल ए वाइट मैंस प्रिजर्व, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल में था, तो उन्होंने कहा एक वाइट मैन को भी रखना चाहिए। तो आबिदी ने मैनेज किया टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द टॉम क्लॉजन, हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। और उसने क्लॉजन को बोला भैया तुमको डिपॉजिट चाहिए अरब वर्ल्ड के, क्योंकि पेट्रो डॉलर बूम हो रहा था उस समय। तो उसने कहा मैं आपको ये आबू धाबी के किंगडम की चाबी देता हूँ, सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उससे पैसा कमाओ, लेकिन तुम मेरे बैंक में इन्वेस्ट करो। तो उसने कोई 2-3 लाख डॉलर इन्वेस्ट किए थे। तो बैंक ऑफ अमेरिका प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी, बैंक एम इज इन्वेस्टेड इन बीसीसीआई, सो बैंक एम इज नॉट गोइंग टू गेट इन टू बेड विद अ क्वेश्चनेबल पार्टनर, और साथ में डिपॉजिट धराधर आ रहे थे आबू धाबी से। तो उस आधार पे ये बैंक शुरू हुआ।
और इसके बाद इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे आया बॉम्ब बनाने में, क्योंकि जो सारी मोस्टली जो फंडिंग आ रही थी वो तो आबू धाबी से आ रही थी, तो ये कनेक्शन इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे शुरू हुआ CIA का? और क्योंकि जब आप देखेंगे 75 से 77 में जब जॉर्ज HW बुश CIA के डायरेक्टर थे, और उसके बाद उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ इसमें आता है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स बैंक इंटरनेशनल BCCI जो उसका नाम रखा गया था, तो वो भी इन्वॉल्व थे और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। वहाँ से उस बैंक से फिर ये शिपिंग शुरू होती है, उसके बाद मटेरियल्स आने शुरू होते हैं, कैलिफोर्निया से जाता है चाइना में शायद, या हांगकॉन्ग में,
हांगकॉन्ग और मलेशिया,
और वहाँ से फिर शिप होके आता है पाकिस्तान। तो ये पूरा नेटवर्क कैसे शुरू हुआ?
देखिए ऐसा है कि दुनिया के इतिहास में 1979 जो है वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट साल था। उस साल में क्या हुआ कि एक तो ये ईरान में वो रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई और वो मुल्लाज सत्ता में आ गए, शाह ख़त्म हो गया, उसका तख्ता पलट दिया गया, और साथ में रूस ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन कर लिया। अब उसके बाद में अमेरिकनों को ये भनक लग गई कि भाई अब ये रूस को हम उसकी वैसी दुर्दशा करेंगे जैसे उन्होंने हमारी वियतनाम में की थी, एंड वी हैव अ चांस टू डिस्ट्रॉय द सोवियत एम्पायर। तो अब हम एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं। तो तब ये जिहाद का आइडिया आ गया। अब जिहाद या गुरिल्ला मूवमेंट यू नीड मनी, तो अब कौन सा बैंक है जो कि ये सारा काम करेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे पास ऑलरेडी बैंक है ही है, ये BCCI है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, सारे जिहादी जो हैं गुरिल्लास जो हैं पाकिस्तान से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो यही रास्ता है। तो व्हाट बेटर देन टू गेट द BCCI बैंक इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ फंडिंग द जिहाद। So the money that was coming from Saudi Arabia and America to fund the weapons purchases, ammunition, logistics, supplies, you have it, you name it,
was coming through. So this whole BCCI ke through hi fund ho raha tha.
Sara BCCI ke through route hua tha.
Oh.
So CIA paisa dal rahi thi. The CIA had accounts with BCCI. Saudis had accounts with BCCI. Everybody had accounts with BCCI and the money was coming through the BCCI.
तो मतलब पाकिस्तान इतना स्मार्ट था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में सबको इम्प्लीकेट कर दिया.
उन्होंने गोरों का बेवकूफ बना दिया. They actually made a fool of the Americans and they used them. तो अब क्या हुआ कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस समय वर्ल्ड ऑयल मार्केट में उतराव चढ़ाव हो रहा था. बिकॉज क्या था कि डिमांड श्रिंक हो गई थी और प्राइसेस हाई हो गई थी और प्रोडक्शन कट्स हो गए थे. तो वो डिपॉजिट्स उतने आ नहीं रहे थे. पेट्रो डॉलर डिपॉजिट्स देर वॉज अ बिग रश फ्रॉम 1973 टू 79. 79 में वो ड्राई अप हो गए. तो उस वक्त उनका जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो जो ये अब्दुल कादिर खान ने शुरू किया था, बिकॉज ही वॉज द वन हु केम फ्रॉम हॉलैंड और उसने कहा कि हम यूरेनियम के थ्रू, रूट के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सस्ता होगा. और दूसरी बात यह है कि यूरेनियम की माइंस हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, एंड वील बी एबल टू यूज़ इट एंड इट विल बी मच चीपर. तो भुट्टो कन्विंस हो गया था. तो अब वो जो वहाँ से स्मगलिंग हो रही थी यूरोप से, ये सारी टेक्नोलॉजी की और इक्विपमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल बेस था नहीं. तो जो आपको हाई क्वालिटी स्टील्स चाहिए वो तो आप सिर्फ चुरा के ला सकते हो. तो वो गोकुल शिपिंग ने उसका वो सर्व द पर्पस ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंपनी दैट वाज सोर्सिंग ऑल दिस मटेरियल. अब क्या हुआ कि आबिदी ने कहा कि वी हैव हिट अ रोड ब्लॉक. हम आगे पैसा कहाँ से लाएं? हाउ आर वी गोइंग टू गेट द मनी दैट अब्दुल कादिर खान वॉन्ट्स टू कम्प्लीट द बॉम्ब? तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ड्रग बिजनेस में जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है. और उन दिनों में ये कोलंबिया से ये सारे ड्रग्स जा रहे थे, हेरोइन, कोकेन अमेरिका जा रहा था. तो उन्होंने कहा कि हम इस ड्रग ट्रेड में घुस जाते हैं.
ये 80s की बात है, 79-80
की बात है, सोवियत इन्वेजन के बाद. उस समय पाकिस्तान में एक जनरल था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक. ये पेशावर में जो आई थिंक 11th कोर था उसका वो कमांडर था और वो जिया का हमराज था और उसने भुट्टो को अरेस्ट किया था. और उसने ये स्टडी की थी कि वियतनाम वॉर का जो सारा किस्सा हुआ था उसमें अमेरिका की हार क्यों हुई, क्योंकि उनके जो जितने फौजी थे वो काफ़ी सारे एडिक्ट हो गए थे, हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे, क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल था बर्मा, लाओस, कंबोडिया में, वहाँ से वो हेरोइन उगती थी और सॉरी ओपियम बनती उगती थी और उसके वो हेरोइन बना के वो उनको सोल्जर्स को सेल करते थे. और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है लड़ाई के दौरान, उसको कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए वो सोल्जर्स वो हेरोइन ले रहे थे. तो वो सारे अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे. तो वो फजले हक ने कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे 10 साल पहले वियतनाम में, तो वॉट इज़ टू स्टॉप गेटिंग द सोवियत सोल्जर्स एडिक्टेड इन अफगानिस्तान? तो उसने कहा कि यार इस धंधे में चलते हैं. तो उसने आबिदी से बात की और आबिदी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है. और आबिदी वॉज वेरी क्लोज टू जनरल जिया और वो बॉम्ब प्रोग्राम फंड ही कर रहा था. तो उन्होंने कहा पैसा भी यहीं से आएगा. तो फजले हक ने फिर कोई 200 रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की अफगान पाक बॉर्डर पे.
खुद
ही वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेटिंग.
पाकिस्तान स्टेट ने एस्टेब्लिश की?
स्टेट ने नहीं, देयर इज नो, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स.
स्टेट एक्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो.
स्टेट एक्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो. ही वॉज अ सर्विंग जनरल बट ही हैड अ वास्ट फॉर्चून. ही लेफ्ट अ वास्ट फॉर्चून. बेचारे का कत्ल हो गया था, मेरा ख्याल है 1991 में हुआ था. तो दे सेट अप 200 ऑड रिफाइनरीज एंड दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है. और उन रिफाइनरीज में से जो हफीम उगरा था अफगानिस्तान में से, इट यूज्ड टू कम देयर टू बी रिफाइंड एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड चाइना वाइट एट दैट टाइम. और वो हेरोइन हो गया और वो हेरोइन फिर वाज बीइंग शिप्ड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर उन्होंने देखा कि भाई ये जो कोलंबिया में से जो सारा ड्रग्स जा रहा है, कोकेन जा रहा है और ओपियम जा रहा है, हेरोइन जा रहा है अमेरिका में, उसके फंडिंग में घुस जाते हैं, उनके पास बड़े डिपॉजिट्स हैं, उनको मनी लॉन्डर कर देते हैं और उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो वो जो अवान साहब थे जिन्होंने के आबिदी को चुना था पहले वो जिहादी नेटवर्क्स को फाइनेंस करने के लिए, उनका जो बेटा था अमजद अवान, ही हैड जॉइंड BCCI बैंक और उसको डिप्यूट किया गया था कि आप सेंट्रल अमेरिका में आप ये सारे डिपॉजिट्स टैप करिए, ये जितने ड्रग वाले हैं, कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स हैं, मेडलिन कार्टेल है, आपने वो नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखी थी नार्कोस,
उसका मेडलिन कार्टेल भी आता
है, पाब्लो एस्कोबार है और वो सारे जो बंदे थे वहाँ पे एल गार्चा और सारे लोग थे।
पाब्लो एस्कोबार का भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है पाकिस्तान के बॉम्ब बनाने में,
बिल्कुल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका पैसा आया था और उस पैसे को इस्तेमाल किया गया था और पैसा आता गया उसको लॉन्डर करते गए, उन्होंने कई मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लॉन्डर किया। और मैनुअल नोरिएगा जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ पैनामा, दैट वाज अ हाफ वे पॉइंट, जैसे कि आप दिल्ली से जयपुर जाओगे तो पुराने जमाने में वो बहरोर आता था ना जहाँ पे वो ढाबे थे, तो वैसे ही वो पैनामा एक किस्म का ढाबा था जहाँ पहले वो ओपियम आता था, सॉरी कोकेन आता था और वहाँ पे फिर ट्रांसशिप होता था टू फ्लोरिडा एंड अदर प्लेसेस। सो मैनुअल नोरिएगा ही यूज्ड टू टेक प्रोटेक्शन मनी, ट्रांजिट फीस फॉर द फ्लो ऑफ कोकेन टू अमेरिका, और आपने ये टॉम क्रूज की फिल्म देखी होगी वो बैरी सील के बारे में रिसेंटली,
एग्जैक्टली
वो इसी के में कनेक्टेड था सारा कुछ। तो वो सारे डिपॉजिट्स भी जो थे वो सारे पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में आ गए, दे वर ऑल्सो बींग यूज टू फंड दिस प्रोग्राम। नाउ इट वॉज अ पॉन्जी स्कीम, मतलब टू पे द इंटरेस्ट रेट्स यू नीड टू गेट मोर डिपॉजिट्स एंड टू पे दोज इंटरेस्ट रेट्स यू नीड टू गेट इवन मोर डिपॉजिट्स। पर फिर ये जो पूरा एक पिरामिड बन गया, वो पिरामिड तब कलैप्स होने लगा जबकि जॉर्ज बुश जो था, जो सीनियर था, उसने ये सोचा कि भाई मैं अब अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेता हूँ, और उसके तीन एम्बेरसिंग कनेक्शंस थे। एक जनरल जियाउल हक के साथ था जो कि 1988 में बहुत बवाल बोल रहे थे कि भाई हमारे पास बॉम्ब है, ये है, वो है, और ही वाज कॉजिंग एम्बेरसमेंट टू द अमेरिकन्स एंड टू जॉर्ज बुश।
87 में ही वो फेमस कुलदीप नय्यर का इंटरव्यू आया था AQ खान से, जब उसने बोला था कि बॉम्ब तो बन गया है, एग्जैक्टली आप बता दीजिए।
वो एक्चुअली इंटरव्यू ये हुआ था कि उस समय हमारे यहाँ पे एक बड़ा काबिल जनरल था, जनरल सुंदर जी, और एक बड़ा ही एग्रेसिव डिफेंस मिनिस्टर था अरुण सिंह, और राजीव गांधी के वो अच्छे दोस्त थे अरुण सिंह, और रक्षा मंत्री था। तो उन दोनों ने एक कहा कि हम ये पाकिस्तान सारा बॉम्ब बना रहा है ना, इसको वन वे और दी अदर इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने एक ये ऑपरेशन क्रिएट किया ब्रासटैक्स, और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ओवररन करने वाले थे, तो पाकिस्तानी को पता चल गया।
और उसी समय चाइना के साथ भी हमारा चल रहा था,
आई एम कमिंग टू दैट, उसी समय चाइना के साथ भी हुआ। तो उन दिनों में 1987 में टाइम मैगजीन का कवर आया था, इंडिया द लेटेस्ट डिफेंस पावर इन एशिया। तो सुंदर जी ने दिखा दिया कैपेबिलिटी कि भाई हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं उस समय 1987 में। इसमें आप देख लीजिए, दिस इज नाउ 36 ईयर्स अगो, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जनरल जिया वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू इंडिया कि खबरदार, तुम साले जो मेरी सरहद पार करोगे तो मैं तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। अब वो मैसेज जाए कैसे, कि कोई माने ही उस बात को, माने या ना माने। तो उसने कहा कि मुशाहिद हुसैन था उनका वो प्रेस सेक्रेटरी या जो भी था जर्नलिस्ट था वो, तो उसने कहा कि भाई तुम ना वो कुलदीप नय्यर साहब को बुलाओ, वो मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, पंजाबी हैं, उनको ये AQ खान के साथ में इंटरव्यू दे दो, और ताकि वो खबर छापें कि पाकिस्तान के पास बॉम्ब है, ऑलमोस्ट है। तो कुलदीप नय्यर बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा भाई मुझे मेरी बात कौन मानेगा, तुम पहले मुझे उसको रिकॉर्ड करने का मौका दो। तो जब वो मैंने उनसे बात की थी, वो मेरे मतलब हमारे फैमिली टाइज हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैंने उसको टीज किया AQ खान को, पहले तो उसने कुछ खास बोला नहीं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं अभी डॉक्टर राजा रमन्ना जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये जो AQ खान है ना, इज़ अ फ्रॉड, इट डजंट हैव अ बॉम्ब। उसने कहा व्हाट रमेश, आई हैव द बॉम, आई हैव इट एंड आई विल शो यू। तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उसने पूरी अपनी पूरी पोल खोल दी अपने आप। मतलब वो जज्बात की राह में आके उसने वो बात पूरी खोल दी। तो कुलदीप नैयर साहब ने फिर वो आर्टिकल छापा और लोगों को वो दे वर नॉट विलिंग टू बिलीव इट कि भाई ये ऐसे ऐसी इसने, ये एक्यू खान ने ये बात कही है। तो वो मामला खुल गया। तो उसके बाद जनरल ज़िया ने कहा सोने पे सुहागा, इसको हम और प्रमोट करते हैं, इससे हम अपने आप को और स्ट्रांग बनाएंगे क्योंकि जो जिहाद हो रहा है इससे हम फिर कश्मीर को भी लिबरेट करेंगे। इट गिव्स मेनी ओपनिंग्स। और वो सोवियत यूनियन उस वक्त तक कलेप्स हो रहा था अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण एंड द सोवियट्स वर गोइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, दे वर प्लानिंग द विदड्रॉल।
और पैसा ही पैसा आ रहा था अमेरिकन से।
हाँ, और वो नहीं, फिर वो पैसा ड्राई अप होने वाला था। जब सोवियत विदड्रॉल हो रहा था तो जब सोवियट्स चले जाएंगे अफगानिस्तान से तो वो जिहाद खत्म हो जाएगा। तो पैसा खत्म हो जाएगा, तो मनी हैज़ टू कम फ्रॉम ड्रग इंडस्ट्री। और उनकी सब प्लानिंग हो गई कि भाई अब तो ज़्यादातर फोकस हमारा सेंट्रल साउथ अमेरिका में होगा। लेकिन जब जॉर्ज बुश ये अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन के लिए अपनी कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तीन जो कनेक्शंस हैं, एक जनरल ज़िया के साथ है, एक जो ये बीसीसीआई बैंक के साथ है,
उसमें खुद अकाउंट था उनका।
हाँ, खुद अकाउंट था उनका। और तीसरा जो ये मैनुअल नोरिएगा है
पनामा वाले,
हाँ, ये तीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। वी मस्ट हैव अ क्लीन स्लेट।
और इसमें एक इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 87 में उन्होंने लॉन्च किया अपना ये कैंपेन, 88 में अगस्त 18 को, 18 अगस्त को रिपब्लिकन कन्वेंशन होना था जिसमें ऑफिशियल उनको रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना था। 17 अगस्त को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो आप बता दीजिए कि जनरल जिया हक का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है।
उसका प्लेन,
प्लेन क्रैश हो जाता है।
एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक टैंक के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे एक जगह, तो वहाँ से वापस जा रहे थे तो उनके जहाज़ के अंदर में अमेरिकन एम्बेसडर भी था, लेकिन जनरल बेग जो था ना, जो भी वो भी मुहाजिर था, ही वॉज अ नॉन पंजाबी जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी, वन ऑफ द फ्यू, उसको भनव लग गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उसने बहाना बनाया कि मैं अपने प्लेन से जा रहा हूँ। तो उसने ही स्टेप्ड आउट, ये लोग गए और जैसे प्लेन टेक ऑफ किया इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स और वो सारे बंदे मर गए।
और ये 17 जुलाई
को हुआ है मेरा ख्याल है, और 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल
शायद अगस्त,
नहीं आई थिंक इट वॉज जुलाई एनी वे।
तो मतलब बात ये है कि जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले
वो किस्सा खत्म हो गया,
किस्सा खत्म
और वो प्रेस से हट गया।
तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जनरल,
मैं कुछ नहीं कहना चाहता
जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने जनरल जिया को उड़वा दिया?
ये मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ये इसमें ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना सबूत ये है कि वो जनरल बेग जो था उसने फिर अपना वो हवाई जहाज, ही लैंडेड इन रावलपिंडी और उसने कहा कि अब मैं बन रहा हूँ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन उस समय ये जनरल, ये जो गुलाम इशक खान था, वो फिर से सरफेस हुआ। ही वॉज अ वेरी पावरफुल फिगर इन द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उसने एक, उनका बड़ा फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर था उस समय शरीफुद्दीन पीरजादा, उसने उसको बोला कि भाई तुम इसका पत्ता काटो बेग का और मुझे बनने दो प्रेसिडेंट। तो गुलाम इशक खान प्रेसिडेंट बन गया, बेग बन गया आर्मी चीफ और कहानी फिर वहाँ से आगे जाती है। बट ये एक्चुअल किस्सा हुआ और अमेरिका में फिर ये उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी बैंक को ख़त्म करने की एंड बाय 1991 द बैंक वाज आल्सो फिनिश्ड।
और रेड्स भी हुई थी फ्लोरिडा में
काफ़ी सारी। यूएस कस्टम्स वाज इनफैक्ट मॉनिटरिंग सम ऑफ दीज बैंकर्स और उन्होंने ऑपरेशन सी चेस लॉन्च किया था जिसके तहत उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन फिर भी दी अमेरिकन्स डिडंट वॉन्ट टू मच ट्रूथ टू कम आउट। उन्होंने कहा इसको कंटेन कर दो, इसको सिमटे रखो, कंट्रोल इट, कन्फाइन इट एंड मेक श्योर दैट इट गोज अवे बिकॉज इट्स अ बैड ड्रीम। और तीसरी बात है उन्होंने नोरिएगा को वहाँ पे पैनामा का इन्वेजन कर लिया और नोरिएगा को उठा के जेल ले गए और कहानी ख़त्म हो गई और वो बुश की बैक स्टोरी जो है पूरी वाइट वॉश हो गई और वो अपनी नॉमिनेशन जीत गया,
प्रेजिडेंट बन गया
और प्रेजिडेंट बन गया।
ये जो ड्रग का जो प्रॉब्लम है यूएस में, इसका जो ओरिजिन है हेरोइन का, वो सारा का सारा इस अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले जो रीजन है और ये पाकिस्तान ISI फंडेड है, इसका एक आपने जो लिखा है स्टैटिस्टिक्स बताया जाए तो 1979 में बहुत 33% था जो इनका इन्वॉल्वमेंट था, अफगानिस्तान से जो जाता था हेरोइन वो 3% था पूरे कंपोजिशन का नॉर्थ अमेरिका मार्केट में, और 84-85 तक वो 30% हो गया, एंड इट वॉज ऑल स्पॉन्सर्ड फंडेड एग्जीक्यूटेड बाय ISI.
एब्सोल्युटली, बिकॉज सी द थिंग इज दैट अमेरिकन्स हैड अ सिंगल माइंडेड व्यू पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्ट्रॉय सोवियत यूनियन. ठीक है जी, अब उसमें जो कोलेटरल डैमेज होगा तो वो देखी जाएगी. मेन चीज़ ये है कि पहले जो ये हेरोइन था ये एसेंशियली गोल्डन ट्रायंगल में उगाया जाता था, वो बर्मा, लाओस, कंबोडिया, आपने वो शान स्टेट का नाम सुना होगा. आजकल एक उस पे अमेजन प्राइम पे वो जैक रायन की लेटेस्ट सीरीज चल रही है, वो उसी शान स्टेट के बारे में है, और वो शान स्टेट का लिंक जो है मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के साथ, और तो वो उस इट वॉज लोकलाइज इन दैट एरिया. अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत होता था बट द मेन थ्रस्ट हैपन्ड वेन द गोल्डन ट्राइंगल बिकॉज ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शंस द पॉपी कल्टिवेशन केम डाउन, तो उन्होंने यहाँ से इंक्रीज कर दी बिकॉज दे सॉ मार्केट अपॉर्चुनिटी हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हिट एट द अमेरिकन्स एंड ऑल्सो हाउ टू अर्न मनी टू बी एबल टू पे फॉर द बॉम्ब. उसके बाद में जब वो फंडिंग में गए तो अब इसमें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑथेंटिक रिसर्च ऑन वेदर दे पाकिस्तानीज यूज द लॉजिस्टिक नेटवर्क्स ऑफ द कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स टू ट्रांसशिप द हेरोइन टू द US. बिकॉज ये जो गोकुल शिपिंग था और ये जो बैंक था BCCI, दे हैड ब्रांचेज एंड ऑफिसेज इन ऑल ओवर साउथ सेंट्रल अमेरिका, और इनका एक पोर्ट है कोलंबिया का बुआनावेंतेरा, और बुआनावेंतेरा में इनका इनके ब्रांचेस भी थे, इनके गोकुल शिपिंग के आउटलेट्स भी थे, और वो काफ़ी जो कंटेनर शिप्स में हेरोइन जाती सॉरी कोकेन जाता था वो वहाँ से जाता था. सो देवर इंटरलिंक्ड विद द ड्रग कार्टेल्स.
तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये 85 में तो 30% था वो मोस्टली हेरोइन कोकेन.
दुनिया का जो हेरोइन है 90% पाकिस्तान अफगानिस्तान AFPAC से आता है.
तो वो अभी भी ISI का इन्वॉल्वमेंट है उसमें.
ये पैसा ये आप देख रहे हो IMF बेल आउट के लिए गए हैं पाकिस्तान.
हाँ.
तो जब उनके पास पैसा नहीं है तो ये सारा उनका न्यूक्लियर सिस्टम कैसे चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है?
तो ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की
बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है. इनकी स्ट्रीट वैल्यू तो कम से कम जो AFPAC रीजन का जो ओपियम है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेरोइन एंड द स्ट्रीट वैल्यू आई थिंक लास्ट ईयर इन 2022 इज इन एक्सेस ऑफ $50 billion. तो उसका आप 1/3 भी ले लो 15-16 billion, तो वो तो इनके पास तो आएगा ही आएगा ISI के पास, और कहाँ जाएगा. अब क्रिस्टल मैथ भी बड़ा भारी धंधा बन गया है. तो वेन अ कंट्री इज टेकिंग अ बेल आउट एंड इट इज अप्रोचिंग द IMF फॉर $4-6 billion, वेयर डज इट गेट द मनी to fund its nuclear program? Where does it get the money to fund a delivery system? Where does it get the money to keep this delivery system? Now their nuclear strategy is 0 to 2,750 kilometers. That means that they will they even have developed micro nuclear weapons like landmines, which if you cross the border will detonate.
और उसका कितना impact होगा?
लोकलाइज इम्पैक्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी. मतलब 2-4-5 हज़ार जो सैनिकों का दस्ता है आपका, जो आप इन्वेजन फोर्स का, वो उड़ जाएगा. और 2,750 किलोमीटर्स इज द रीच टू अंडमान आइलैंड्स. सो दे हैव गॉट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स विच कैन बी डिप्लॉयड एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स एज वेल. तो ये जो सारा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है उनकी उनकी मदद तो चाइनीज ने की ही है, एंड द चाइनीज हैव इंटीग्रेटेड the Pakistani army into their own army. So they work as one force against India and or against any other western quad country. जो कभी ऐसी लड़ाई हुई तो वो सारे मतलब एक साइड पे होंगे और हम लोग एक साइड पे होंगे. बट द फैक्ट इज दैट वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? ये तो सारा ड्रग का पैसा है.
US को पता नहीं है क्या?
पता है तो वॉट कैन दे डू? दे हैव अ ड्रग कार्टेल टुडे दैट हैज न्यूक्लियर वेपन्स. सो व्हेन देयर इज अ ड्रग कार्टेल व्हिच इज न्यूक्लियर आर्म्ड व्हिच हैज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम एंड देन हैज गॉट जिहादी स्लीपर एजेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु कुड डेटोनेट अ डर्टी बॉम्ब एनीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो आप उसको आप क्या करोगे? ये उनका फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर है जो उन्होंने खुद बनाया,
खुद बनाया. मैं इस पे चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरीके से CIA को का इन्वॉल्वमेंट था. आपने एक ऑफिसर का नाम इसमें रखा है, रिचर्ड बार्लो, मेरे ख्याल से
रिचर्ड बार्लो.
हाँ,
जिनको तो विसल ब्लोअर था.
हाँ,
वो तो विसल ब्लोअर था, उसने ये सब एक्सपोज किया. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि CIA का एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव था कि सोवियत एम्पायर को कैसे खत्म किया जाए, और वो उस ऑब्जेक्टिव में जो पाकिस्तानी बॉम्ब बना रहे थे तो उन्हें बनने दो, जो ड्रग्स बनने उन्हें बनने दो, हम उसको बाद में देखेंगे. लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो पाकिस्तानी साइकी है, अब पाकिस्तान में देखिए, देर आर बलूचीज, देर आर सिंधीज, देर आर पश्तूनस, देर आर पंजाबीज एंड देर आर मुहाजिर्स. लेकिन द मोस्ट डोमिनेंट एथनिक ग्रुप इज द पंजाबीज, हु डोमिनेट 50% ऑफ पाकिस्तान, हु कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनेट दैट कंट्री. जो पंजाबी मुसलमान है, ही इज द मोस्ट कंपेटिटिव स्पीसी इन द वर्ल्ड, बहुत कंपेटिटिव है. आई मीन, आई एम अ पंजाबी, आई ऑल्सो नो दैट पंजाबीज आर कंपेटिटिव, बट द पंजाबी मुसलमान इज अ रूथलेस पर्सन. ही हैज रूथलेसनेस विच अदर पंजाबीज डोंट नॉर्मली हैव बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. और इंटेलिजेंस बहुत है, और उनकी एक इच्छा है कि वी शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर आवर वैल्यू. क्योंकि उन्होंने, उनकी लॉजिक ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपने फौजी दिए वहाँ पे जर्मनों को के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको इकरार किया था कि भाई हम ये जो ऑटोमान एम्पायर हैं उसको हम तबाह होने नहीं देंगे, हम उसको महफूज रखेंगे. लेकिन उसके बाद में अंग्रेज़ों ने ऑटोमान एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, वो जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी इंडिया में उसी के संदर्भ में थी. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर से फौजी गए, देयर वर 25 लाख इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ द एलाइज, और उसमें से 10 लाख कम से कम तो पंजाबी थे. उनको फिर पाकिस्तान जो मिलना था वो एडिक्वेट पाकिस्तान मिला नहीं, क्योंकि नदियाँ रह गई इंडिया के अंदर में, और अकाल पड़ रहा था पाकिस्तान में. सो देन उनको तीसरा मौका उन्होंने फिर ये जिहाद में उन्होंने पूरी मदद की कि सोवियत साम्राज्य को नष्ट करने के, पर उसके बाद भी अमेरिकन छोड़ के चले गए. तो उन्होंने कहा साले इन गोरों को सिखाना है सबक, बस हफीम निकालते जाओ, देते जाओ, इनकी सोसाइटी को तबाह करो, क्योंकि जो ये हमें इज्जत नहीं देंगे तो हम इनके इनके लिए क्यों वफादार रहें. इट्स अ वेरी important ideological phenomenon because the Pakistanis feel they are second to none. They feel they should be given a seat on the Security Council. They are the cleverest people in the world. But tabhi to aapke sala IMF pe bailout ho raha hai kyunki aap to apni economy sambhal nahi sakte. So when a country is almost near bankrupt, how does it have such a sophisticated nuclear program, delivery system? Where is the funding coming from? Achha, the other interesting thing is ki the biggest commercial business in Pakistan is the Fauji Foundation. Ab wo Fauji Foundation makes everything from tampons to steel.
Sahi baat hai.
To unka bhi kam se kam $5-6 billion ka program hai. Kisi ko pata nahi ki unka turnover kitna hai. Main to assumption laga raha hu kam se kam $5-6 billion ka to hoga hi hoga. Jo ye sari legitimate activities se. So the ISI is a part of the Pakistan Army, and the Pakistan Army has a country, and it is also a drug cartel, and they've got a nuclear deterrent. So unke paas unko chhuega kaun? Ye to sala Pablo Escobar ko pata hota to wo Colombia mein wo satta palat deta, jo ye Pakistani wahan jaake uske actually advisor ban jate political. So they would have overthrown the government of Colombia and made Colombia into a nuclear power. Also, And under that protection, they would have been manufacturing their drugs.
ये वही तो कर रहे थे जब इनका पैसा खत्म होने लगा अमेरिकन से 87-88 के बाद, तो इन्होंने ये बेचना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करना शुरू कर दिया, ये कहीं अफगानिस्तान को भी
इन्वॉल्व,
ईरान, ईरान में भी थे, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ये भी, और उसमें सारा का सारा चाइना उनकी हेल्प कर रहा है,
बिल्कुल हेल्प कर रहा था, बिल्कुल हेल्प कर रहा था। देखो ऐसा है कि एक चाइनीज जनरल था, उसका नाम था जनरल ज़ियोंग ग्युंगकाई, उसने कहा कि जो पाकिस्तान इज चाइनाज इज़राइल। अब चाइनीज का लॉजिक ये था कि अमेरिका ने ये इज़राइल, वाइट मैन ने, मतलब द वेस्टर्न अलायंस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इज़राइल को क्रिएट किया ताकि ये सारा अरब वर्ल्ड जो है काबू में रहे। इज़राइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, 8-10 मिलियन होगी, और उन्होंने सारे अरब वर्ल्ड को मात किया हुआ है। उसी तरह से चाइना की लो कॉस्ट पॉलिसी है कि ये जो आपका नॉर्थ कोरिया है, ये जापान और साउथ कोरिया को कंटेन करेगा, आज तो अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। और उसी तरह से पाकिस्तान जो है, इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर चाइना टू कीप इंडिया एट बे, कि इंडिया इज बॉक डाउन विद पाकिस्तान, सारा फोकस तो पाकिस्तान पे आता है और चाइना वहाँ पे ज़मीन हड़पे जा रहा है लद्दाख में और जगहों में। तो दिस द चाइनीज एक्टिवली इनकरेज, मेरी किताब में आप पढ़ लीजिए, एक्टिवली इनकरेज द पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने उनको बहुत मदद की, और इन्होंने फिर उनको कहा कि अब आप नॉर्थ कोरिया को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो। तो जो वो C-130 था, उसकी फ़ोटो मुझे मिल गई, एक सैटेलाइट फ़ोटो एक अमेरिका से। मैं वहाँ गया था क्योंकि मैं फिल्म बना रहा था ये न्यूक्लियर ट्रेड पे, उसका नाम था न्यूक्लियर टैंगो, व्हाई अ हीरो फेल फ्रॉम ग्रेस, कि ये पाकिस्तान का बॉम्ब बनाने के बावजूद एक्यू खान को क्यों प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अरेस्ट किया था और उसको क्यों नौकरी से निकाल दिया था और उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो उस दौरान मुझे ये फोटोग्राफ मिली और अमेरिकन मेरे को सोर्सेज ने मुझे दी, और उसमें एक पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 जो है वो प्योंगयांग एयरपोर्ट के टारमैक पे है। अब आप ये बताइए कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 वहाँ पे क्या कर रहा है। फिर पता चला कि अमेरिकन्स एंड इंडियंस वर मॉनिटरिंग द एयर ट्रैफिक ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना एंड बैक, और इनकी रेगुलर फ्लाइट्स चल रही थी। तो इनका बड़ा भारी मतलब कनेक्शन था नॉर्थ कोरिया के साथ में, और नॉर्थ कोरिया के एक डिप्लोमेट की बीवी जो कि एक खुद जासूस थी, डिप्लोमेट भी जासूस था, उसका उसके पति ने उसका खून कर दिया इस्लामाबाद में,
अपनी पत्नी का,
क्योंकि वो पत्नी डिफेक्ट कर रही थी अपनी बेटी के साथ, और उसको ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने टैप किया था, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस उसको वहाँ से इस्लामाबाद से लंदन ले जा रही थी, तो उसको पता चल गया उसके हस्बैंड को, और उसने उसका कत्ल करवा दिया, और उसकी लाश जो है एक पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन में नॉर्थ कोरिया गई, और उसी प्लेन के अंदर में कुछ सेंट्रीफ्यूज जो हैं जो कि यूरेनियम की इनरिचमेंट करते हैं, वो भी उसके साथ में भेजे गए थे।
बाप रे।
तो ये मतलब इनका जो था ना, इट वॉज लाइक अ काउबॉय मूवी, फ्री एंटरप्राइज
फिल्म चल रही है,
अनरेगुलेटेड फ्री ट्रेड। हाँ जी, इतना माल आ रहा है, इतना जा रहा है, इतने नोट आ रहे हैं, बैंक है, ये लॉन्डर कर रहा है, जबरदस्त एंटरप्राइज था।
फिर वो अरेस्ट क्यों हुआ, आपने बोला?
वो अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन्स को पता चला, उनके क्या हुआ कि एक आदमी अरबी लंदन में MI6 के दफ्तर में पहुंच गया।
अच्छा।
उसने कहा जी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, आप ज़रा सुन लो मेरी दास्तान को। उन्होंने कहा क्या है तेरी दास्तान? उसने कहा देखो ऐसा है कि वो गद्दाफी साहब कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका वही हशर हो जो सद्दाम हुसैन का हुआ है।
ये 2003 के बाद की बात है, 2003
की बात है,
मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट था।
हाँ, तो वो जो हशर हुआ है सद्दाम हुसैन का, वो नहीं चाहते कि उनका वो हशर हो, इसलिए वो अपनी पूरी जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो पूरा प्लान है और जो उसकी सारा सेटअप है वो आपके सामने हाजिर करना चाह रहे हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन टीम लीबिया गई, जब वो वहाँ गए, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी फट गई कि वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सर लेबोरेटरी के अंदर में ये सारे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से मिले आपको, जो कि यूरेनियम इनरिच कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो अब्दुल कादिर खान से लिए हैं, और कम से कम 250 टन के वो डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल्स थे, फलाना ढिमका। तो ये पूरा 500 टन का माल उन्होंने अमेरिकनों को दे दिया। और उस समय जब प्रेसिडेंट बुश ने फिर ये फैसला लिया कि अब देखो बॉस ये बहुत हो गया है, ये इन्होंने इनको साला बॉम्ब दे दिया, ईरानियों को बॉम्ब दे दिया, और हम क्या पता नॉर्थ कोरियंस को दे दिया, और क्या पता और किसको दे दिया, हम कितने सारे बंदों से डील करेंगे, और सारे के सारे दो नंबरी हैं, नॉर्थ कोरिया भी दो नंबरी है,
सब दो नंबरी
तो ये क्या करेंगे। तो फिर मुशर्रफ, एंड दे नीडेड मुशर्रफ बिकॉज दे वर फाइटिंग उसामा बिन लादन, सारा उनका सप्लाईज पाकिस्तान के थ्रू जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक डील करते हैं, डील ये फेस सेविंग फॉर मुशर्रफ, कि ये जो अब्दुल कादिर खान है ये कबूल कर लेगा कि ये सब उसकी गलती है और उसका ये प्राइवेट वेंचर था, और वो मुझे वो कहेगा कि मुझे वो आप सजा दे दो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने अपनी फिल्म में एक अब्दुल कादिर खान का बयान दिखाया है, जब वो जाता है टीवी पे, ही अपीयर्स ऑन टीवी पाकिस्तान टेलीविजन, और वो उस वक्त अपना टीवी पे कैमरा पे अपना गुनाह कबूल करता है। उसके दो मिनट पहले वो एक प्रेस रिपोर्टर को कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, प्रेजिडेंट मुशर्रफ हैज़ टोल्ड मी टू टेक द ब्लेम, आई एम टेकिंग द ब्लेम।
ऐसे उसने बोल दिया।
उसे मेरे फिल्म में है। जो आप कोई देखना चाहे तो वो अब फिल्म में फिर से रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाना नहीं चाहते ऐसी फिल्में, ये जो इंडियन चैनल्स हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये पता नहीं बड़ी पॉलिटिकल बात है। लेकिन उसने टीवी पे कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ही सेड डोंट वरी, पाकिस्तान पैदाबाद, और वो वहाँ गया अपना बयान देने के लिए कि मैंने सब कुछ कबूल किया है, और उसके बाद आ गया कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन, आई हैव डन, सब कुछ ठीक है। तो मतलब उसने बेवकूफ़ बनाया मुशर्रफ ने दुनिया का और बुश का, अमरीकनों का, एंड ही मस्ट हैव कंटिन्यूड डूइंग वॉट ही वॉज डूइंग, बट अल्टीमेटली दे वर फोर्स्ड टू अरेस्ट हिम बिकॉज विदाउट द अरेस्ट अमेरिकन्स वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जो उन्होंने काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को बेची, काफ़ी बिलियन लिबियंस को बेची, और काफ़ी बिलियन वो नॉर्थ कोरियंस को बेची,
मतलब धंधा बना लिया था बेचने का,
बिल्कुल धंधा, और सब चोरी की टेक्नोलॉजी थी।
बताओ चोरी किया
और फाइनेंस किया था अरबियों को बेवकूफ बना के, उनसे पैसा लेके। जब ये बैंक कलेप्स हुआ BCCI, तो आबू धाबी का घाटा था कोई कम से कम 2-3 बिलियन डॉलर का
उस समय
1990s में, चपत खा गए वो।
इसलिए आजकल
कोई दे नहीं रहा,
सुर बदले हुए हैं,
सुर बदले हुए हैं, कोई दे नहीं रहा, कटोरा लेके घूम रहे हैं, कोई नहीं दे रहा पैसा,
क्योंकि सबको लूट लिया।
हाँ,
कोई छोड़ा नहीं इन्होंने अपने उसके चक्कर में। मुशर्रफ की आप अपने बात की, उनके साथ भी बहुत मतलब अच्छे अच्छे कार्य जुड़े हुए हैं। तो जब उनके शुरुआत हुई तो ये जो पूरा फंडिंग, मतलब जो ये मुजाहिदीन तैयार हो गए थे, इनको अफगानिस्तान से कश्मीर के में डाइवर्ट करना, वो एक बहुत बड़ा किस्सा है। और उनका जो भुट्टो के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो रिलेशनशिप शुरू हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक अंदर ही अंदर हामिद गुल और ये सब लोग प्लान बना रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर देंगे। ये 90s की बात है, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा है।
हाँ, 90s के, हाँ 90s
की बात है। जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, तब इन्होंने हामिद गुल जो ISI में थे, उन्होंने प्लान बनाया कि
पैसा दिया ओसामा बिन लादेन को,
ओसामा बिन लादेन को पैसा दिया कि इसको मरवाओ।
देखिए मुशर्रफ जो था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पात्र है इस पूरी कहानी में, कि जब वो मेजर जनरल था, ही वॉज डायरेक्टर, आई थिंक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, और वो बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तो उसने कहा देखिए मैडम, हमें बड़ा चार्मिंग आदमी था, एंड ही हैड अ वे विद विमेन, तो उसने बेनज़ीर को चार्म कर दिया। उसने कहा मैडम देखिए ऐसा है कि वी नीड मनी टू फाइट द कश्मीर जिहाद, एंड ही डिडंट वांट टू टेल हर कि भाई ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि बेनजीर वाज रिलक्टेंट टू गो दिस इंटायर इलीगल वे, क्योंकि उसको अमरीकनों का डर था, अमरीकनों ने उसको इंस्टॉल किया था एज उनके सपोर्ट से, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी,
तो वो चाहते
उन्होंने कहा था कि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी इज नॉन प्रोलिफरेशन। तो मैं कह रहा था कि मुशर्रफ ने उसका ये विचार था कि वी नीड टू कंसोलिडेट अफगानिस्तान अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके तहत हमारी जो हफीम की प्रोडक्शन है और उसकी जो कन्वर्जन है इनटू हेरोइन वो महफूज रहे और वो स्मूथली सब कुछ प्रोग्राम पूरा चलता रहे। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और अंडर वन इस्लामिक लॉ बाय यूजिंग फोर्स वी विल कंसोलिडेट ऑल ऑफ अफगानिस्तान सिविल, ये जो सिविल वॉर चल रही थी तो उनके जितने वॉरिंग फैक्शंस हैं उनके ऊपर हम हावी हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, बट वी नीड द कंसोलिडेशन। तो उसके लिए हमें एक पपेट चाहिए, एक सेंट्रल फिगर चाहिए, एक जिसे कहते हैं मुतबन्ना चाहिए, जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुशर्रफ हैड इन माइंड मुल्ला उमर, जो कि एक सोवियत जहाद का वेटरन था और जिहाद के बाद में वो एक आईएसआई के फंडेड मस्जिद का प्रीचर था, एक मौलवी था, मुल्ला था, उनकी भाषा में मुल्ला बोलते हैं।
तो इस्लामिज़ेशन ऑफ अफगानिस्तान,
सो नाउ दिस फेलो मुल्ला उमर, ही वाज वर्किंग इन अ मॉस्क अंडर अ सैलरी पेड बाय हाजी बशीर नूरजाई, जो कि उसका जिहाद में उसका कॉम्पैट्रियट था, और हाजी बशीर नूरजाई वाज अ सप्लायर ऑफ ओपियम टू दी रिफाइनरीज ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक एंड दी आईएसआई। तो वो एक बन गया कट आउट बिटवीन द पाकिस्तान आर्मी, बिटवीन दी आईएसआई एंड अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा इसको प्रमोट करो, तो उन्होंने फिर उसको प्रमोट करना शुरू किया। एंड माइंड यू, मुल्ला उमर वाज बीइंग पेड अ सैलरी बाय हाजी बशीर नूरजाई, हु वाज एन आईएसआई व्हाट्स इट कॉल्ड एसेट, एंड ही वाज गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द आईएसआई, वेपन्स फ्रॉम द आईएसआई, एंड हाजी बशीर नूरजाई वाज इन टर्न सीडिंग देम। देन देर वर टू फेलोज, मौलाना फजलुर रहमान एंड मौलाना समीउल हक, इनके करीबन 8-10 हज़ार मदरसे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे।
ये JMI,
MDI, JUI, लश्कर ए तैयबा सारे के सारे मिले हुए थे। दिस वॉज द
MDI वॉज फंडेड बाय ओसामा बिन लादेन।
यस, एंड इट वॉज फंडेड बाय द ISI,
जो लश्कर ए तैयबा बना।
ऑल दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड, व्हिच अल्टीमेटली मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द लश्कर ए तैयबा। सो दीज मदरसाज वर प्रोवाइडिंग द सोल्जर्स फॉर द जिहाद। नाउ द जिहाद इन अफगानिस्तान वॉज येट द सेकेंड जिहाद इन अफगानिस्तान हैड टू बिगिन सो दैट दी अफगानिस्तान कुड बिकम एन इस्लामिक एमिरेट। एंड देन वंस
अफगानिस्तान पपेट ऑफ आईएसआई
एंड पपेट ऑफ आईएसआई, इट वॉज अ पपेट ऑफ आईएसआई एंड कंसोलिडेटेड। फिर उसके बाद में क्या होगा कि द फोकस कुड शिफ्ट टुवर्ड्स कश्मीर मोर इफेक्टिवली। सो ये मुल्ला उमर को देन दे ऑल्सो वॉन्टेड समबडी फ्रॉम विद इन द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हु कुड टेक ओनरशिप ऑफ द तालिबान, बिकॉज वो सारे जो तालिब थे वो पाकिस्तानी मदरसा से निकले थे। सो ये वो मेजर जनरल नसीरुल्ला बब्बर हैं हु वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान, ही बिकेम द कट आउट फॉर द ISI vis-a-vis द तालिबान। सो ही सेज दैट ही एक्चुअली created the Taliban and he used the logistic cell of the Pakistan army to ferry goods to Central Asia through Afghanistan, and the Taliban would provide safe passage to the trade.
What goods?
we don't know about goods because we were not hiding inside the tarpaulins of those trucks.
मतलब mainly तो drug ही होगा.
So ये दो cutout थे, हाजी बशीर नूरजाई और ये जो आपका है General Nasirullah Babbar. But the brain behind the selection of Mullah Omar and the brain behind the routing of these cadres from the Samiul Haq and Fazlur Rahman madrasas through the MDI, JUI, LET was all Musharraf's brain. He was the man who had the vision to actually, and he was inspired by the zeal because see, he is a muhajir. He was not a Punjabi guy.
बिल्कुल.
He was not from Pakistan. He came from Delhi. वो जो नहर वाली याद है उसने डायलॉग दिया था नहर वाली हवेली वहां से तो उसको इंतकाम लेना था. His family had been displaced. He had been uprooted from his soil. तो उसको इंतकाम चाहिए था. तो उसने अच्छा इंतकाम लिया. He was running with the hare and hunting with the hounds. Americans का बेवकूफ बना रहा था. साथ में तालिबान को पाला हुआ था. साथ में बिन लादन को रखा हुआ था और साथ में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था. और जब कभी उसको कोई मतलब ही हैड टू प्रोवाइड सम कैंडिडेट टू द अमेरिकन्स टू सेंड टू ग्वांतानामो बे जहाँ पे उनका प्रिजन है ये सब जिहादियों के लिए तो वो दे देता था. यू वुड सैक्रिफाइस सम अरब लेफ्ट राइट अंडर इसको दे दो इसको अफगानी को दे दो अरबी को दे दो पाकिस्तानी को कभी नहीं.
और उसके बाद जब 2001 में जब 9/11 हुआ उसके बाद जब अमेरिकन्स ने बॉम्बिंग शुरू की तो कुंडूज में जब ये बहुत इंटेंस लड़ाई हो रही थी तब मुशर्रफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ़ोन करते हैं और डिक चैनी से बात करते हैं और दोनों एग्री करते हैं कि एक सेफ पैसेज मिले ताकि जो ड्रग का काम है जो हमारे पास ड्रग का
वो अनस्पोकन था वो अनस्पोकन था.
हाँ
लेकिन वो जो आईएसआई के लोग और जो सोल्जर्स वहां पे कंडूज में थे जिनके लिए अमेरिकन्स ने एक बॉम्बिंग एम्बार्गो लगाया और एक उनको एक नो फ्लाई जोन बना दिया 10-12 घंटों के लिए या एक दिन के लिए कि भाई यू कैन फ्लाई योर प्लेन्स देयर इन इवैक्यूएट दोस गाइस. उन्होंने साथ में वो ड्रग्स भी इवैक्यूएट किए क्योंकि इट्स ऑल मनी. और वो कंडूज के थ्रू इट वाज गोइंग इनटू दिस उज़्बेकिस्तान एंड देन इनटू अदर ट्रेल्स
अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका सब जगह जा रहा था ये. और अमेरिकन को पता था कि हम बॉम्बिंग स्टॉप कर रहे हैं
लेकिन उनको साले इंतकाम लेना था ओसामा बिन लादन से.
तो इतना कैसे टनल विजन हो सकता है मतलब कि यार आपको पता है कि आपकी मार्केट में जाने वाला है वो सारा ड्रग.
भैया आप अमेरिका में बैठे हो आप पॉश गाड़ी चला रहे हो आप वहाँ पे मार्टिनीज पी रहे हो ठीक है ना और आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे साला हो क्या रहा है और आपको लोग कह रहे हैं कि भैया आपका बेवकूफ बना रहे हैं दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ यू बट नो वी गॉट नो चॉइस बिकॉज हाउ वुड दे आइदर दे वुड हैव मेड पीस विद पुटिन एंड सेड ठीक है तुम साले हमारे साथ मिल जाओ. लेकिन उनको दे नीडेड पुटिन ऑल्सो एज अ पोटेंशियल एनिमी बिकॉज उनके फिर वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता. हाउ वुड दे जस्टिफाई गोइंग इन फॉर क्रिएटिंग एंड इन्वेंटिंग न्यू वेपन्स. सो दे नीडेड पोटेंशियल एनिमी एज पुटिन. सो देयरफॉर द अमेरिकन्स said that look we have to prop up Musharraf because hame intikam lena hai. Abhi tak kisi ne continental America pe attack nahi kiya tha. Sala Osama bin Laden was the only person. Isko to humne khatam karna hi karna hai. Aur uske liye chahe humko devil ke saath mein khana bhi khana pade. Even if we have to sup with the devil we will do it. And they knew then that Musharraf was the devil.
और कितना पागल बनाया है CIA का और वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट का. वो होमलैंड का एक सीजन है ना आपने देखा होगा जिसमें ISI का सबसे बड़ा रोल रहता है मतलब जहाँ पे वो पाकिस्तान में बेस्ड है
सीजन फाइव जिसमें वो निम्रत कौर होती है
उसमें एग्जैक्टली मतलब सब कुछ कैप्चर
इट इज सो ब्यूटिफुली कैप्चर्ड सो एक्यूरेट.
इसमें आपने 2004 में ये पुस्तक रोक दी. इसमें एक एपिसोड नहीं आया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से पाकिस्तान कब गया.
नहीं उसमें उसकी कहानी नहीं ओसामा बिन लादेन की. देखिए इसमें सब प्लॉट्स इतने हैं इसमें लेयर्स इतने हैं. मेरा फोकस यही था कि पाकिस्तान ने बॉम्ब कैसे हासिल किया उसने उसको कैसे फाइनेंस किया और उसामा बिन लादन इज ए सब प्लॉट इन दैट. अब फिर उसका स्कोप बड़ा बन जाएगा किताब का, फिर वो उसामा बिन लादन आ गया, फिर कुछ और आ जाए, फिर वो किताब बिकम्स अनमैनेजेबल. अब मैंने इसको इसलिए एंड किया 2004 में क्योंकि इसके बाद में इसका सीक्वल लिखूंगा.
अच्छा,
उसकी मेरी रिसर्च अभी चल रही है.
रिसर्च जो आप जिसके लिए मशहूर हैं, जो इस बुक में सब लोग देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग पढ़ें इसको, ताकि जो पाकिस्तान को बैंक्रप्ट बोलते हैं आज भी, उनको पता चले कि कैसे वो बैंक्रप्ट हो ही नहीं सक रहा.
इट इज़ नॉट अ बैंक्रप्ट कंट्री, इट इज़ अ फ्यूडल कंट्री वेयर द फ्यूडल एलीट विच इज द आर्मी एंड द ISI एंड द बिग लैंड ओनर्स एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, दे आर वेरी पावरफुल. उनको आप निकाल लो ना पाकिस्तान कंट्री में से, तो वो एक मतलब हाई, वेरी हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट बन जाएंगे क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. जब मैं इंग्लैंड पढ़ने गया तो हमारे पास तो उन दिनों में वो तो $8 के साथ में बंदा जाता था, और रिजर्व बैंक यूज टू गिव यू एन अलाउंस फॉर एजुकेशन विच वॉज वेरी वेरी लिमिटेड. वो सस्ता टाइम था. और रुपए जो था वो 16 रुपए का पाउंड था. तो मेरे जेब में पैसा ही नहीं होता था एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज इट थिंग्स वर एक्सपेंसिव. एंड पर जो पाकिस्तानी थे, हम तो साले बाइसिकल भी नहीं चला अफोर्ड कर सकते थे, वो तो मतलब पोर्श गाड़ियाँ, पॉन्टियाक ट्रांसएम कार्स, और खुले खर्चे उनके जो लोग वहाँ पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स. So the elite of Pakistan had access to vast wealth, much more than the elite of India. You can say on a scale at that time in the 70s, there was a difference of 1:10. Yahan pe matlab socialist society thi, quote unquote. So wealth and money was not looked at favorably. Society was very conservative and society's wants were very limited. लेकिन उनका जो स्केल था वो कुछ और था. तो दैट्स वाई दे कुड थिंक बिग एंड दैट्स वाई दे इक्वेटेड देमसेल्व्स विद द पीपल इन वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका. गोरों के साथ उन्होंने अपने आप को इक्वेट किया क्योंकि वो दे वर रबिंग शोल्डर्स विद देम. हमारे जो लोग थे, हमारी जो एलीट थी, उनकी उतनी मोबिलिटी नहीं थी. ट्रैवल वॉज रिस्ट्रिक्टेड, फॉरन एक्सचेंज वॉज नॉट अवेलेबल, कंट्री वॉज सेल्फ रिलायंट. ये जो आत्मनिर्भर था थी वो तो तब से चली आ रही है. पॉलिसी सेल्फ रिलायंस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टीज 1956 आबादी रेजोल्यूशन. सो वी वर अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी एंड देयरफॉर वी नेवर हैड द एस्पिरेशंस टू बी अ ग्लोबल प्लेयर विच द पाकिस्तानीज हैड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी एंड पेनिट्रेशन इन टू द वेस्ट, एजुकेशनल सिस्टम्स, कल्चरली, यू नो, एंड थ्रू ट्रैवल. तो हम लोग ने तो वी हैव कॉट अप आफ्टर 1991 जब ये रिफॉर्म्स हुए थे. तो फिर वी हैव कॉट अप एंड हमारी जो फिर एलीट है, वी एक्सप्रेस्ड आवर एस्पिरेशंस न्यूक्लियर पावर एंड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. इंडिया इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. वी हैव नॉट प्रोलिफरेटेड एट ऑल एंड वी हैव बीन वेरी कंजर्वेटिव. हमारी तो मजबूरी थी. अब वो कहानी वो देखिए फिल्म रॉकेट बॉयज की, which tells you that we had a compulsion that we had to go nuclear because without it we would have been defenseless. So we have actually been extremely conservative in our entire outlook over the last jo homi baba ne nuclear program ab hamara envisage kiya tha aur implement kiya tha aur americans ne unko khatam kar diya tha 1967 mein. तो उन्होंने जो प्लान किया था, जो वो जिंदा रहते तो वी वुड हैव मे बी अ फ्यू इयर्स अर्लियर वी वुड हैव बिकम अ मच मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पावर. बट स्टिल वी वर बिकॉज ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप वी वर एबल टू मेंटेन द टेम्पो एंड मोमेंटम एंड पेस ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम.
और 1991 में भी जब पूरे बैंक्रप्टसी के हम पहुंच गए थे, तब भी हमने रिफॉर्म्स का सहारा लिया रादर देन कि
यस
हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम भी बेच सकते थे.
और मैं आपको बताऊं कि 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था. 98 में नहीं किया,
बिल्कुल,
था
बिल्कुल
1990 इन चाइना. फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो चाइना में उन्होंने वो ब्लास्ट किया था. उसके बावजूद वी टुक द पेनफुल एंड द स्लो पाथ ऑफ रिफॉर्म एंड वी बिल्ट अप आवर इकोनॉमी फ्रॉम 1991. इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड इट अप एंड वी हैव बिल्ट एन इंडस्ट्रियल बेस. तो वो उन्होंने नहीं किया. तो ये दीज आर द टू सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. दे वॉन्टेड अ शॉर्टकट, वी प्रेफर टू गो द स्लो वे. वो जो टॉर्टॉइस और हेयर की रेस है ना, तो वो खरगोश आगे भाग रहा है लेकिन अल्टीमेटली ही रन्स आउट ऑफ स्टीम. अब दे हैव अगेन गॉन टू द IMF फॉर अ बेल आउट.
खरगोश चल रहा है अभी, रुक गया कछुआ, और कछुआ आगे आगे बढ़ गया है,
चलते जा रहा है.
चलिए सर, बहुत बहुत बेहतरीन संवाद रहा ये, और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से जल्दी आएँ और हम एक पार्टीशन पे, अभी 14-15 तारीख आने वाली है अगस्त, तो उस पे हम एक एपिसोड करते हैं.
ज़रूर.
आपकी जो बुक है डार्क सीक्रेट्स, मैं वो इतने पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं और करते हैं दोबारा.
मेरी तो बड़ी अनकन्वेंशनल व्यू पॉइंट है.
नहीं चलेगा, कोई नहीं,
आई डाइवर्ट अवे फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड व्यू पॉइंट.
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जरूरी है, बिकॉज दोज अल्टरनेटिव रियलिटीज विच एग्जिस्ट, विच हैव नॉट बीन मेन स्ट्रीम, उनका भी बात करना जरूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
माय प्लेजर.
और इतनी बढ़िया पुस्तक लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. चाहूंगा कि सब लोग पढ़ें. फिर से दिखा देता हूँ.
थैंक यू.
थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.
थैंक यू आर्यंत.